नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए सरकार के कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, CBI, NIA, ED, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं।
श्री शाह ने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। उन्होंने देशवासियों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह मंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की नई साइबर अपराध शाखा का भी लोकार्पण किया और गृह मंत्रालय के राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष ने यह नोटिस लोकसभा सचिवालय में महासचिव को सौंपा है। लोकसभा सूत्रों ने बताया है कि नोटिस की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। श्री रिजिजू ने कहा कि पिछले सप्ताह कांग्रेस की महिला सांसदों का सदन में प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुँच जाना शर्मनाक कृत्य है।
हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं।
संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा कि बजट सरकार की प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास और निरंतरता को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस बजट को दिशाहीन बताया। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को 1,90,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि नहीं मिली है। राज्यसभा में शिवसेना सदस्य मिलिंद देवरा ने कहा कि इस बेहद राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल भरे दौर में भारत व्यापक आर्थिक वृद्धि और स्थिरता का एक दुर्लभ उदाहरण बनकर उभरा है। कांग्रेस के नीरज डांगी ने आरोप लगाया कि इस बजट ने किसानों, मजदूरों, युवाओं और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये पता लगाने को कहा है कि क्या देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे कोई राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है या राज्य विशिष्ट समूह। न्यायालय ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई समानता है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इस वर्ष मई और जून के बीच समाप्त होने वाला है। इसके लिए आयोग ने तैयारी संबंधी प्रशासनिक उपाय किए हैं। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद वर्ष 2026 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। साथ ही चालू खाता घाटे के अनुमान को घटाकर 0.8% कर दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि व्यापार घोषणा के बाद भारतीय मुद्रा पर दबाव कम हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।